आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग हमेशा की तरह आज भी अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया पर विचार करने बैठे हैं। एक श्रावक अपने आदर्श पूज्य पुरुषों के अनुरूप अपने जीवन को बनाने की भावना रखे, ये बात आचार्य भगवंतों ने कही है। इसलिए हम अपने पूज्य पुरुषों या आदर्श पुरुषों के अनुसार अपनी श्रद्धा, ज्ञान और आचरण को अच्छा बनाने में क्या उपाय हो सकते हैं, उन पर विचार कर रहे हैं। पूज्य पुरुषों की सेवा करने से भी हमारा जीवन अच्छा बन सकता है, यदि हम उनकी सेवा निस्वार्थ भाव से करते हैं। संसार में सेवा को धर्म माना गया है, लेकिन सेवा का जो कॉन्सेप्ट जैन दर्शन का है वो थोड़ा सा समझने लायक है। सेवा के अंतर्गत भगवान की पूजा भी रखी है, पूज्य पुरुषों के ऊपर आने वाले विपत्ति या संकट से उन्हें बचाने के प्रयत्न करना, यह भी सेवा के अंतर्गत रखा गया है। और वो भी तीन विशेषताएं जिनके भीतर हो उनकी ही सेवा की जाए, तपोधनाय गुण निधिये अग्रहाय, तप ही जिनका धर्म है, धन है, जिन्होंने समस्त घर गृहस्थी के विकल्पों का त्याग कर दिया है, और गुण निधिये जो सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र इन गुणों से युक्त है, उनकी सेवा हमारे जीवन को अच्छा बनाने में कारण बनेगी। हम जिनके चरणों में बैठे हैं ये देखना तो पड़ेगा कि वे चरण किस तरफ जाते हैं। हम जिनके पैर छू रहे हैं हमें देखना तो पड़ेगा कि वे चरण किस दिशा में जा रहे हैं। वे अपने जीवन को ऊंचा उठाने की दिशा में जा रहे हैं, तब फिर हम उन चरणों की सेवा करेंगे तो हमारा जीवन भी ऊंचा उठा जाएगा। आदर्श उसे कहते हैं जिसके सम्मुख पहुंच करके हमें अपने जीवन की वास्तविकता का बोध होता है और हम वैसा ही अपने जीवन को बनाना शुरू कर देते हैं। दर्पण को आदर्श कहते हैं जिसके सामने पहुंचकर हमारे चेहरे पर लगी हुई कालिख या हमारे चेहरे की सुंदरता दोनों हमें एक साथ स्पष्ट दिखने लगती है। हमारी मलिनताएं और हमारी निर्मलता जिनके चरणों में बैठने से या जिनके दर्शन मात्र से स्पष्ट हो जावे कि निर्मलता मेरा स्वभाव है, मलिनताएं मेरी अपनी अज्ञानता और अशक्ति से आई हुई है, ये स्पष्ट होने लगे, उनकी सेवा करना, उनके लिए किस तरह से सेवा करें, तो चार प्रकार से, औषध से, आहार से, उनको स्थान इत्यादि दे करके और जो धर्म ध्यान में कारणभूत है ऐसे उपकरण देर के उनकी सेवा की जा सकती है। यह जो चार प्रकार का दान है वही सेवा के चार ढंग हैं। यह परमार्थभूत सेवा है। संसार में जो प्रचलित सेवा है वो लौकिक सेवा कहलाती है, वो लौकिक दान कहलाता है। लौकिक दान भी परस्पर एक दूसरे के उपकार में कारण तो बनता है, लेकिन जो पारमार्थिक सेवा है यह जो अलौकिक दान है वो हमारे आत्म उत्थान में कारण बनता है। हमें इन दोनों प्रक्रियाओं को अलग अलग और स्पष्ट रूप से जानना चाहिए, तब सेवा और दान का जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम अपने भीतर क्लियर हो जाएगा। लौकिक जो दान है वो तीन तरह से किया जाता है, दया दत्ति, समदत्ति और सकल दत्ति। ये तीन लौकिक दान के भेद हैं। जिस किसी जीव को दीनहीन देखकर मन में करुणा या दया का भाव उत्पन्न होने पर उसकी जो मदद की जाती है, उस पर जो उपकार किया जाता है, वो सब दया दत्ति कहलाता है। उसमें हम विचार नहीं करते हैं कि वो कैसा है, गुणवान है या निर्गुण है। इस प्रकार के दान से भी लोक व्यवहार चलता है। समति वो कहलाता है जिसमें हम अपने समान आचार विचार वाले को घर गृहस्थी के सामान के साथ अपनी बेटी देते हैं, वो समदत्ति कहलाता है। यह भी लोक व्यवहार चलाने के लिए आवश्यक है। कंडीशन रखी है कि अपने समान आचार विचार वाले व्यक्ति के लिए घर गृहस्थी के लायक सामग्री के साथ अपनी बेटी को देना। ये बात अलग है कि आज हम समानता पैसे की देखते हैं, आचार और विचार की समानता नहीं देखते हैं। और यही वजह है कि यह जो दान की प्रक्रिया है, जो लौकिक है, वह भी लोकोपकार करने में कारण नहीं बन रही है। और तीसरा है सकल गति, अपने योग धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाने में सक्षम पुत्र के लिए अपनी समस्त कुल परंपरा और धन संपदा को सौंप देना और स्वयं सन्यस्त हो जाना, स्वयं सन्यास ग्रहण कर लेना, ये कहलाता है सकल दत्ति। आज यह प्रक्रिया भी दान की जो लौकिक है वो देखने में नहीं आती, बंटवारा करना पड़ता है, बराबर हिस्से करना पड़ते हैं। जबकि नीति विचार नियोगी सुत को राज दियो बड़ भागी, न्याय नीति का विचार करके जो नियोग जिसका है उसे अपनी समस्त संपदा देकर चक्रवर्ती मुनि बन जाते हैं। परंपरा तो वो है, लौकिक दान भी है तो ऐसा दान जो धर्मात्मा पुत्र है उसे ही सारी कुल की परंपरा और धन संपदा देंगे, शेष के लिए कोई मदद नहीं करेंगे। अपने व्यसनी पुत्र की मदद करने वाले को ये विचार करना चाहिए। हाँ, वो लौकिक दान भी नहीं दे पा रहा है ठीक से, अभी कोई कुछ नहीं बोल पाता। आज के समय में घर में अगर कोई शराब पीता हो या चरस भांग और अन्य नशे करता हो, फिर भी पिता की धन संपदा का अधिकारी हो जाता है, ये विचारणी है। क्या ये वास्तव में दान कहलाएगा? ये तो लौकिक दान भी नहीं कहलाएगा। पारलौकिक दान की तो चर्चा बाद में करेंगे। अगर ठीक ठीक से करुणा दान और अपनी कन्या का दान और अपने पुत्र योग पुत्र को संपत्ति का दान, इन तीनों में भी अगर ठीक तकार से ये किए जावे, तब ये भी परस्पर एक दूसरे का उपकार करने वाली चीज है। लौकिक उपकार तो इनसे हो ही जाएगा। करुणा दान में बहुत बहुत उदाहरण आपने पढ़े सुने होंगे। मेरे जीवन में एक देखने में आया, वो आपको बताऊं। एक माता पिता का एक ही पुत्र था और वो 14 वर्ष का होने पर अपना जन्मदिन मना सिद्ध क्षेत्र से दर्शन करके लौट रहा था। कार एक्सीडेंट में ब्रेन डेथ हो गई। ब्रेन डेथ, अभी जीवित है लेकिन थोड़ा समय बाकी है, 5-6 घंटे जिएगा, ब्रेन डेथ हो चुकी है। कंप्लीट डेथ होने में थोड़ा समय लगेगा पर होगी अवश्य, अब बचा नहीं सकता कोई, ऐसी स्थिति है। माता पिता से पूछा जाता है कि क्या कहना करना चाहेंगे। उस बेटे का जब से उसने होश संभाला था तब से कहता था कि मेरे जीवन का एक एक कण भी किसी और के उपकार में लग सके तो मैं अपने जीवन को सार्थक मानूंगा, ये उसकी भावना थी। वो उन माता पिता को ध्यान में थी, ऐसे संवेदनशील क्षणों में उनने निर्णय लिया था और निर्णय लिया क्या, उसकी पूर्ति भी की। दोनों किडनियां दो लोगों को ट्रांसप्लांट कर दी गई, दोनों आंखें दो लोगों को दे दी गई और पूरी शरीर की स्किन 80% जल गए व्यक्ति को ट्रांसप्लांट कर दी गई। 5 लोगों को जीवन मिला। उसका जीवन तो निश्चित ही था कि समाप्त ही होगा। इसमें ज्यादा विचार करेंगे तो बहुत सारी बातें आएंगी, इसलिए ये लौकिक दान है, इससे कोई परमार्थ सदने वाला नहीं है, इसलिए इस पे ज्यादा विचार नहीं करना, नहीं तो मुश्किल में पड़ेंगे। इसलिए पहले मैंने कह दिया कि वो जो आप अपनी संपत्ति अपने शराबी बेटे को दे रहे हो उस पे ज्यादा विचार करना इसकी अपेक्षा, क्योंकि लोग करते हैं, इस पर विचार करके दिन आ जाएगा मेरे पास प्रश्न की इस तरह के दान को भी क्या आप दान कहेंगे, आगम में क्या मत है आगम का, ऐसा प्रश्न आ सकता है। इसलिए कह रहा हूं कि आगम का इसमें क्या मत है कि अगर कोई पुत्र संतान और मदिरा पान करे तो क्या वो पिता के पैसे की हकदार है या पिता को उसको पैसा देना चाहिए या कि घर से बाहर निकाल देना चाहिए, क्या विचार करना चाहिए। हाँ, बहुत स्पष्ट है ये, इसमें कहीं कोई हम लोग करुणा दान की जो महत्ता है उसको नहीं समझते हैं और इस तरह जो अपने जीवन में विकृतियां हैं उनको तो हम बढ़ाते चले जाते हैं और जिससे हमारे परिणामों में दिक्कत आएगी उस प्रक्रिया में और प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। हमें दान के वास्तविक स्वरूप को समझना चाहिए। दान 3 तरह से दिया जा सकता है, वो भावनाओं पर निर्भर है कि दान का फल कैसा क्या मिलेगा। आपने क्या दिया है इसका महत्व है, लेकिन आपने कैसे दिया है इसका महत्व ज्यादा है। अगर संकलेश पूर्वक दान दिया जाता है तो सब तामसिक दान है, जिसके देते समय संकलेश, जिसे दे देने के बाद संकलेश, वो सब तामसिक दान है और वर्तमान में ऐसा ही दान प्रचलित है। कैसा? देने की जरा भी भावना नहीं है, 4 लोगों के बीच में इज्जत का सवाल है, इसलिए भीतर अत्यंत संकलेशित होने के बावजूद भी सबके कहने से बोल दो। अब सब कह रहे हैं और इज्जत का सवाल है, 4 लोग क्या कहेंगे कि इतने बड़े आदमी हो क्यों नहीं दो, दे दो। अब दे दो तो पहले ये तो बताओ किस काम में लगेगा, ये नहीं बताओ, ये बताओ कि जिस काम में लगेगा उसमें हमारा नाम कितने दिन तक रहेगा, और अगर नाम नहीं बोला जाएगा तो बार बार स्लिप भेजना पड़ेगी कि देखो हमारे नहीं बोले अभी तक, ये संक्लेश। और अगर बोल दिए हैं तो कहते तो थे कि पटिया भी लगवाएंगे। ग्रेनाइट पर आजकल बहुत अच्छे से लिखने लगा है, वैसा वाला लगवाएंगे, संगमरमर का तो ओल्ड पैटर्न हो गया, वो तो सबका लिखा जाता, लेकिन इन्होंने तो संगमरमर पे भी लिखवा के नहीं लगाया। और ये तक कह रहे थे कि अगर इतना दोगे तो हम श्रीफल चढ़वाएंगे सभा में, जय जयकार होगी, तालियां बजेंगी, कुछ भी तो नहीं हुआ। बड़ा संकलेश मन के भीतर है रहने के बाद भी, और इतना ही नहीं अभी देने के बाद भी उस पर अपना अधिकार मानते हैं कि मैंने दिया। सो अगर महावीर जी में मैं एक कमरा बनवाया है तो जब जब मैं महावीर जी जाऊंगा तब तब वो कमरा मेरे लिए बुक मिलना चाहिए, मेरे नाम से मेरे लिए खुलेगा वो कमरा। वो नहीं मिलता है तो अत्यंत संक्लेश होता है। ये दान नहीं है, ये सौदा है, इन्वेस्टमेंट है, ये डोनेशन नहीं है, ये ध्यान रखना। इस तरह के दान का प्रचलन बहुत है, इसलिए चेतना निर्मल नहीं होती इतना दान दे देने के बाद भी, कारण इतना सही है। और इसी वजह से गुणभद्र आचार्य महाराज ने आत्मानुशासन में लिखा है कि पहले कीचड़ से लिप्त होकर बाद में पानी से स्नान करने से अच्छा है कि कीचड़ से लिप्त न हुआ जाए। अर्थात जो व्यक्ति पहले बाह्य लूटने के लिए पहले अन्यायपूर्वक संपत्ति कमा करके फिर दान देता है, वो सब ऐसा ही है जैसे कीचड़ से लिप्त होकर बाद में स्नान करना। कहते इससे अच्छा है कि दे ही नहीं, जितना है उतना ही दे, दो पैसे हैं तो दो पैसे ही बहुत बड़ा दान होगा। जैसे कि सत्याग्रह के लिए लोगों ने हजारों रुपया दान में दिए थे, और एक बूढ़ी अम्मा जिसे कि वॉलेंस दूर से ही हटा रहे थे कि बापू के पास क्या लेकर के जाओगी, क्या दोगी उनके लिए, वो कहती मुझे जाने तो दो, और आकर के मंच पर एक पैसा सत्याग्रहियों के लिए बापू को दिया। उन्होंने कहा कि अम्मा एक पैसा? हाँ, मुझे तो दिन भर में एक पैसा ही मिलता है, आज मैं भोजन नहीं करूंगी, आज तो ये एक पैसा सत्याग्रह के लिए ही दिया है। वो तब उन्होंने कहा कि हजारों रुपए के दान जो दिए गए हैं उसमें सबसे बड़ा है ये एक पैसे का दान, क्योंकि इसने तो सर्वस्व दे दिया, बाकी लोगों ने तो जैसे कि सब लोग भोजन करके थोड़ी चिटकी डाल दी, कहते खतन। अब आजकल जो डोनेशन है जो संकलेश पूर्वक दिया जाता है उसके पीछे एक और चीज छिपी हुई है, अपने करोड़ों रुपए की धन संपत्ति को बचाने के लिए थोड़ा सा कुछ परसेंटेज निकालना जरूरी है गिफ्ट की तरह, इसलिए वो सरकार से बचाने के लिए भी इस तरह देना पड़ता है। तो चलो लगा दो, ऐसे ही लगा दो, नहीं तो चला जाएगा इनकम टैक्स में चला जाएगा। ये बड़ी सावधानी की आवश्यकता है दान देते समय। ये सब तामसिक दान है, और इन तामसिक दान से जो कुछ भी कार्य होते हैं वे चेतना को विकसित करने वाले नहीं है, भौतिक सुख दे सकते हैं लेकिन आत्म सुख तो नहीं प्राप्त। इसलिए दान देते समय भावों की महत्ता भी है। दूसरे प्रकार का दान होता है राजसिक। किस चीज के लिए? दूसरे का तिरस्कार करके अपने को स्थापित करने की भावना से, अपने अहंकार की वजह से। एक दिया जाता संकलेश पूर्वक, दूसरा दिया जाता अहंकार पूर्वक। जितनी भी ये बोलियां हैं उन सब में यही प्रक्रिया होती है, विचार करना बहुत अच्छे से, वरना बोली की प्रक्रिया का ढंग अलग है कि जितना बोल दिया उतना देना आवश्यक है, उससे पीछे नहीं हटेंगे। अभी तो सिर्फ इस दृष्टि से बोलते हैं कि दूसरे को पीछे करके मैं आगे निकल जाऊंगा, ईमानदारी से विचार करना इसका, मुझे प्राप्त हो जाएगी, ऐसा ही भाव है तो बोलने के बाद उस राशि को हम दे ही क्यों नहीं देते, पीछे क्यों हट जाते बोलने के बाद। अगर हमने 1000 रुपए लिए और दूसरे ने 2000, तो मेरा फर्ज है कि 2000 वाला 2000 दे और 1000 वाला 1000 रुपए दे, क्योंकि बोले हैं। लेकिन कोई नहीं देता तो उसके पीछे अहंकार ही छिपा हुआ है। इतना ही नहीं, ऐसा आज तक किसी ने नहीं दिया हो। ये उदाहरण मैंने अपने सामने देखा है एक व्यक्ति का, शिवपुरी में, नाम नहीं बताऊंगा। इतना अहंकार पूर्वक और उनसे ज्यादा जैसे ही किसी और ने बढ़ाया, उन्होंने फिर दिया नहीं। कौन है यहाँ पर जो मेरे बोली बोलने के बाद उसको बढ़ा सकता है, इतना अहंकार आप सोच सकते हैं। हाँ, ऐसे भी दान देने वाले हैं लोग, और ऐसे दान देने वालों की भी पीठ थपथपाई जाती है, बड़ा मजा है। हाँ, आज के समय में इन किन प्रकारेण घर में जैसे पाप कार्य करके धन आता है, ऐसे ही इन किन प्रकारेण धर्म के कार्यों को करने के लिए भी हमें संपत्ति इकट्ठी करना पड़े, तो फिर समझना कि पंचम काल आ गया। यही कहूं, उससे ज्यादा क्या कहूं। आज वर्तमान में यही चीज देखने में आती है। ये सब राजसिक दान है जिसमें हम अपने अहंकार को पुष्ट करते हैं चार लोगों के बीच में, और इस बात को प्रदर्शित करने के लिए कि मैं सबसे बड़ा दाता हूं। एक ब्राह्मण को सेठ जी ने बुलाया अपने घर भोजन के लिए। जो ब्रह्म विद्या का ज्ञान दे वो है ब्राह्मण, अत्यंत स्वाभिमानी, परोपजीवी नहीं है। हाँ, ये ध्यान रखना। आकर के सेठ जी के यहां पर भोजन किया और भोजन के बाद दक्षिणा दी जाती है, तो सेठ जी ने कुछ पैसे तिजोरी में से निकाले, निकालते समय और बहुत सारे पैसे नीचे गिर गए, चांदी और सोने के सिक्के। पता नहीं सेठ जी के मन में क्या आया, पूरे के पूरे जितने बाहर तिजोरी से निकल गए थे वो सब उठा करके और ऐसे सामने रख दिए और कहा, ले ले ब्राह्मण, तू भी क्या ध्यान रखेगा, मैं तो तिजोरी से बाहर आया हुआ, फिर तिजोरी में रखते ही नहीं हूं। तो मालूम ब्राह्मण जी ने क्या कहा, 1 रुपया और कहीं से सिक्का उनको दक्षिणा में मिला था, वो सिक्का पॉकेट में से निकाला, उस ढेर में फेंका और कहा कि ऐसे तुच्छ दान को मैं स्वीकार भी नहीं करता हूं, देता ही हूं। क्या जिसमें तिरस्कार पूर्वक दिया जाए और अहंकार का पोषण किया जाए वो दान श्रेष्ठ नहीं है, लेने योग्य भी नहीं। हाँ, ये राजसिक और तामसिक दान हमारे जीवन का उत्थान करने वाले नहीं है, हमें अपनी इस प्रक्रिया को बदलना चाहिए। दान तो सात्विक ही होता है, सात्विक दान में देने वाला अत्यंत विनय भाव से देता है, क्या विचार करता है कि लेने वाले का उपकार जो उसने मेरे से ले लिया, इनकार कर देता है तो मेरा तो देना व्यर्थ हो जाता। आप देख लें, अगर कोई देने वाला किसी को कुछ दे और लेने वाला इनकार कर दे तो बताइएगा देने वाले का क्या रहा। जैन दर्शन में दान की प्रक्रिया ऐसी ही है जिसमें कि देने वाला बड़ा नहीं है, ग्रहण करने वाला, स्वीकार करने वाला बड़ा है। रोज अपन इस प्रक्रिया को देखते हैं। साधु जनों के लिए दान देने वाला श्रावक अपने को बड़ा मानता है क्या? नहीं मानता, वो तो कृपा मानता है कि कृपा आपकी जो आपने सिरार लिया। ये है हमारे यहां दान तीर्थ, जिसे राजा श्रेयांश ने भगवान ऋषभदेव को पहली बार आहार दान देकर के प्रारंभ किया था, जिसमें देने वाला अहोभाव से भरा हुआ है, लेने वाले का उपकार मान रहा है कि कृपा आपकी, और लेने वाला निष्प्रय है, उसने याचना नहीं की है, तब वो लेने वाले का लेना सार्थक होगा। यहां तो लेने वाला याचना करे और देने वाला अहंकार और संक्लेश करे, तो ये दान की प्रक्रिया अत्यंत दूषित है। हमने कई सभाओं में देखा है जब लोग झोली लेकर के निकल जाते हैं। हमें विचार करना चाहिए इस प्रक्रिया पर। याचना करनी पड़े और देने वाला अहंकार पूर्वक दे कि चलो अब क्योंकि आप झोली लेके आए थे इसलिए ये डाले पैसे हमने, जाओ आगे जाओ, ऐसा क्या हम कर रहे हैं? हमने इस दान की अत्यंत पवित्र प्रक्रिया को क्या रूप दे दिया है। हमें विचार करना चाहिए। सिर्फ विचार करने के लिए कह रहा हूं, बाकी और कुछ मत करना। जैसा चल रहा है दे दो, कर ले। मैं कभी किसी भी प्रक्रिया में परिवर्तन के लिए किसी को वाद नहीं करता। मैं तो सिर्फ ये कहता हूं कि विचार करें जो कर रहे हैं। अगर आप विचारवान हैं तो आप विचार करें, और अगर विचार आपका वास्तव में सही है तो फिर किसी के कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो क्रिया अपने आप परिवर्तित हो जाएगी, वो अपने आप दुरुस्त हो जाएगी। हम इतने विचारवान होकर के और देखा देखी इस तरह की प्रक्रियाओं में आसानी से शामिल हो जाते हैं। हम ये तो सोचते हैं कि लेने वाले की योग्यता है कि नहीं, हमें तो ये सोचना चाहिए कि देने वाले की योग्यता है कि नहीं, लेने वाला पात्र है कि नहीं। हम ये विचार करते हैं कि पात्र को देंगे अपात्र को नहीं देंगे, कुपात्र को नहीं देंगे। बहुत अच्छा है, विचार करेंगे अपन एक दिन, इसी पर विचार करेंगे कि दान देने के लिए पात्र कौन है और अपात्र कौन है, कुपात्र कौन है। लेकिन जरा ये तो विचार कर लें कि देने वाला देने के योग्य है या नहीं है, ये कोई नहीं विचार करता। जो व्यक्ति शराब का धंधा करे और फिर दान दे, क्या वो देने योग्य है? जो व्यक्ति पोल्ट्री फार्म खोले और जो स्लॉटर हाउस के शेयर्स लेवे और जो पाउच और गुटखा बनाने का पूरा मैन्युफैक्चरिंग करे, उसके हाथ से लिया गया दान योग्य है लेने योग्य है? जो क्रूर कर्म अपने आजीविका के लिए अपनाए, जो कि खर कर्म कहे गए हैं 15, जिनका की जैन आगम में निषेध है कि ये इन व्यापारों से अपनी आजीविका नहीं चलाएगा, उन व्यापारों को करने वाले से अगर लिया जाएगा तो क्या वो लेने योग्य है? कौन ले रहा है ये बाद में विचार करेंगे, दे कौन रहा है पहले ये विचार करें। क्योंकि देने वाला पहले अपने भावों को परखे कि किन भावों से दे रहा हूं और देने की योग्यता मैंने हासिल की है नहीं की है, तब वो दान सार्थक होगा। पानी ऐसा ही बरसे ताकि ये जो बाहर बैठे लोग हैं वे इसमें बैठना सीख लें तो बहुत अच्छा रहेगा। सभा धर्म सभा है, ये कोई थिएटर नहीं है जिसमें जहां कहीं बैठ करके सिनेमा देखा जाए। कई दिन से ये बात मेरे मन में आती है लेकिन अवसर मुझे नहीं मिलता था, आज अवसर मिल गया। धर्म सभा में तो अत्यंत विनय पूर्वक पंच परमेश जी का स्मरण करके 9 बार नमोकार पढ़ के और फिर मंगल गान के साथ में, मंगलाचरण के साथ में बैठ करके हल्की पलथी मार के ध्यान की मुद्रा में फिर धर्म का अध्ययन और चिंतन मनन किया जाता है, जहां कहीं बैठ करके नहीं किया जाता। आज तो पानी से बचने आए हैं, कभी इस संसार से बचने के लिए बैठिएगा। आज तो पानी से बचने के लिए यहां बैठे हैं, ये तो संसार के पापों से बचाने के लिए धर्म उपदेश है भैया। थोड़ी सी बुरी लग जावे तो लग तो जावे एक बार, अभी तक खाई नहीं लगी। एक जो अपने जीवन में जो हम करते हैं वो क्यों नहीं हम अत्यंत विचार पूर्वक करते हैं? मुझे हमेशा ये लगता है कि हम कितने विचारवान हैं, हमें मन की सामर्थ्य मिली है। हम जो भी करें सुबह से शाम तक हम कोई ना कोई कर्म तो करते ही रहते हैं, भला बुरा, लेकिन उसके संपादन करने में थोड़ा तो विचार करें कि किस तरह करें उस काम को, ताकि वो काम हमारे जीवन को कर्मण्येवाधिकारस्य, कर्म में तो मेरा अधिकार है, तब फिर जब कर्म में मेरा अधिकार है तो उस कर्म को कैसे करूं, चाहे वो संसार का कर्म हो चाहे वो धर्म का कर्म, मैं सारे कर्मों को इस तरह से करूं जिससे कि उस कर्म में मैं लिप्त नहीं हो, उससे पार हो जाऊं। ऐसा विचार करके करेंगे तो ये सब आवश्यक नहीं होगा कहना, लेकिन क्या करें। बीच में वो बात आई, वो भी हमारे जीवन को एक मैसेज तो दे ही गई, हमारे जीवन को एक संदेश देने वाली तो है, बुरा मानने वाली नहीं है, अपने जीवन से कोई एक संदेश ले लेना चाहिए। क्या सचमुच कैसा होता होगा भगवान की धर्म सभाओं में, जब 12 सभाएं लगी हुई हैं और जीव उसमें बैठकर अपने आत्म कल्याण की बात पर विचार करता है। हम विचार कर रहे हैं अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया पर, तो सबसे पहले हमारे विचार इतने समृद्ध होना चाहिए कि जिससे हम अपने आचरण को ठीक ठीक बना सकें। जिसके जितने विचार समृद्ध हैं वही अपने आचरण को परिवर्तित कर सकता। दान का एक विचार हमारे अपने आचरण को परिवर्तित करने वाला होना चाहिए, यानी हमारे अहंकार और संकलेश को घटाने वाला होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं सेवा करूं, दान दूं, भगवान की पूजा करूं, ये जितने भी रूप हैं सेवा के उन सब में संकलेश और अहंकार शोभा नहीं देता, उनमें तो परिणामों की अत्यंत निर्मलता और आनंद ही हमारे जीवन के उत्थान में कारण बनेगा। ऐसे सात्विक दान को ही हमें महत्व देना चाहिए। और विचार करेंगे कभी अपन बैठेंगे, आज एक छोटी सी घटना दान की जिस पर अपन विचार कर रहे हैं कि वास्तव में वो जो सात्विक दान है वो कैसा होता होगा। दो छोटी सी और सच्ची घटनाएं, दोनों धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित घटनाएं हैं। बहुत पुराने समय में एक व्यक्ति ने पंच कल्याणक करवाए और उस पंच कल्याणक की जो पत्रिका निकाली थी उसका प्रारूप वो पढ़ने लायक था। मैंने शायद आपको पहले कभी बताया हो, मुझे ध्यान नहीं क्या लिखा हुआ था उस पर, आज कि जितनी भी पंच कल्याणक की धार्मिक बड़े बड़े अनुष्ठानों की जो प्रारूप बनाए जाते हैं उनसे बिल्कुल हटकर के था। लिखा था कि मेरे किसी पूर्व संचित पुण्य से मेरा मन श्री जी को पधराने का हुआ है और मेरे किसी शुभ कर्म के उदय से आप सब पंच जनों की जूठी पातल उठाने का मन हुआ है, सो आप सब इस अनुष्ठान में पधार कर हमें ये अवसर प्रदान करें। लगभग ऐसा मिलता जुलता प्रारूप था उसका, बताइए कैसे दिया होगा उस व्यक्ति ने वो दान। श्री जी के विराजमान करने के लिए और इतना ही नहीं, आप सब पंच जनों की जूठी पत्तल उठाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो, ये अवसर आप दें। देने वाला कितना विनम्र है, कहीं कोई अहंकार और संकलेश नहीं है, तब वो सात्विक दान कहलाएगा। और इतना ही नहीं, एक और उदाहरण प्रसिद्ध है कि पूरा मंदिर बना करके तैयार कर दिया अपनी धनराशि से और शिखर पर कलश नहीं चढ़ाया और न ही सीढ़ियां लगाई ऊपर चढ़ने के लिए, उसके लिए सब लोगों से निवेदन किया कि आप सब मिलकर के यह कार्य करें। लोगों ने कहा कि अरे इतना सा कार्य जब आपने सारा कुछ किया है तो इतना और करें आप ही। उन्होंने कहा कि मैं कर तो सकता हूं लेकिन करूंगा नहीं। क्यों? इसलिए नहीं करूंगा कि हो सकता मुझे अहंकार आ जाए अरे इसमें अहंकार की क्या बात है, नहीं आ सकता है, कलश तो आप ही चढ़ाएं और मंदिर में प्रवेश की सीढ़ियां भी आप ही बनाएं, ताकि मुझे ध्यान तो रहे कि मेरा इसमें कुछ नहीं है, सीढ़ियां और शिखर ये दोनों ही मंदिर में अनिवार्य है, वो सब तो आप लोगों के द्वारा ही बनाई गई, वरना आ कैसे पाते हैं। ये इस तरह के सोच रखने वाले लोग वास्तव में सात्विक दान दे पाते होंगे। आज अपना सोच किस तरह का हो गया, हमें अपने सोच में परिवर्तन लाना चाहिए। भैया दान तो वास्तव में अपन याद करते हैं, चाहे भामाशाह को याद करें दान में, और चाहे वर्मी जी जैसे लोग इनको याद करें, सबके उदाहरण हमारे सामने हैं। वर्णी जी के जीवन में किस तरह उन्होंने दान दिया था, आपको वो घटना सुनाऊं, फिर अपन दान के बारे में और जो शेष चर्चा है वो करेंगे। चिरौंजा बाई उनकी धर्म की मां थी, क्योंकि वो तो असाटी थे जन्म से, और घर का परित्याग करके और अहिंसा धर्म को स्वीकार किया था, तो चिरौंजा बाई को अपनी धर्म की मां माना था और उन्हीं के घर में रहते थे। फिर जाकर के अध्ययन के लिए संस्कृत विद्यालय में रहे। उनकी अपनी जीवन गाथा आप पढ़े तो पता लगेगा। घर में जब बाई जी मंदिर गई तो कह गई कि भैया गणेश प्रसाद, कोई लकड़ी बेचने वाली आवे तो चार आने पैसे की लकड़ी तुम डलवा लेना, हम मंदिर से आते हैं फिर भोजन बनाएंगे। ठीक है, अब लकड़ी बेचने वाली निकली तो वर्णी जी ने बुला करके, और चार आने पैसे की लकड़ी मिलती थी एक गट्ठा, सो डलवा ली। अब लेकिन जब चार आने पैसे देने लगे तो मन में विचार आया कि देखो चार आने में क्या होगा, अब इतनी फटी सी तो इसकी धोती है, वो खाने को भी कुछ होएगा कि नहीं होएगा। सो चार आने पैसे के साथ में और बाई जी की एक धोती टंगी थी, सो वो भी दे दी, और वहीं पास में और थोड़े गेहूं रखे थे से आधा से, सो वो गेहूं भी दे दी कि जे भी ले जा। अब जब बाई जी जो लौट के आई तो उनने कहा भैया हमारी सोलह की धोती खा गए, समझ गई वो, और उसी सोलह की धोती के पास में वो धुले हुए गेहूं रख गई थी कि आएंगे सो थोड़ा पीस करके तुरंत आटा, समझ गई कि बहुत दयालु है और इसने दे दिया होगा, कुछ नहीं कहा। देखो मैं ये उदाहरण इसलिए आपसे कह रहा हूं कि देने वाला किस तरह दे रहा है और समर्थन करने वाले का कितना शांत परिणाम है, संतोष धारण कर लिया कि चलो कोई बात नहीं। त्यागी व्रति के लिए भी इससे संदेश लेना चाहिए और सामान्य व्यक्ति के लिए भी संदेश लेना चाहिए कि अपन के भावों में अब कितनी कमी आ गई, और अपन देते भी हैं तो किस तरह देते हैं। वास्तव में तो देना तब सार्थक है जो हमारे परिणाम दे करके निर्मल हो जाए, देते वक्त भी हमारे परिणामों में निर्मलता बनी रहे, ऐसा ही दान वास्तव में सार्थक है, ऐसी ही सेवा वास्तव में सार्थक है। हम ऐसे दान और सेवा के द्वारा चाहे तो अपने और दूसरे के जीवन को सच्चे रास्ते पर लगा सकते हैं और अपना जीवन सार्थक कर सकते हैं। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर महिमा।